शाबार ऊपरे मानुष सत्य। हिंदी क्षेत्र में भक्ति आंदोलन एक प्रस्तावना। डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। भक्ति आंदोलन सामंतवादी व्यवस्था में जनतांत्रिक शक्तियों को बल देने वाला सांस्कृतिक प्रतिरोध था। यह सांस्कृतिक प्रतिरोध विशिष्ट भारतीय स्थितियों में धर्म के आवरण में आया, परंतु पुराने धर्म और धार्मिकता पर आश्रित रहने के बजाय उसने नई सामाजिक आवश्यकताओं और नई सामाजिक चेतना से जोड़ा। उसने धर्म के आंतरिक संसार और बाहरी आवरण को काफ़ी हद तक बदल डाला। चूंकि भक्ति आंदोलन का उदय सामंतवाद से गहरे तक उत्पीड़ित जनता और उत्पीड़ित जनता के हमदर्द उदार उच्चवंशियों में हुआ, इसीलिए भक्ति धर्म हृदयहीनों के हृदय के रूप में उभरा। धर्म की आंतरिक सारणियों में मौजूद भेदभाव को एक हद तक स्थगित किया गया। परिणाम स्वरूप ऐसे विचारों को बल मिला जो मानवीय समता, प्रेम और भाईचारे पर बल देते थे। दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में जहाँ कि उसका सहज स्वरूप निर्मित हुआ और इसे प्राथमिक उत्कर्ष मिला, यह समतावाद इसलिए भी प्रभावी अस्त्र बना कि वहाँ 6वीं-7वीं शताब्दी में प्रभावी रूप से मौजूद बौद्ध और जैन धर्म में उच्च मानवीय विजन भुला दिए गए थे और उसका स्थान कर्मकांडी संस्थावाद ने ले लिया था। यह धर्म राज्य और प्रभु वर्ग से संयुक्त होने के कारण अपने सिद्धांतों के प्रति एक हद तक समझौतावादी रुख अपना चुके थे। इस विशिष्ट स्थिति में भक्ति की भावना और उसके पीछे कार्य कर रही विचारधारा ने जहां एक ओर इनके विचार विरुद्ध एक भावनात्मक आधार निर्मित किया, वहीं दूसरी ओर प्राचीन वैदिक कर्मकांडों, यज्ञ, बलि, हिंसा और ब्राह्मणवादी वर्चस्ववाद को भी प्रश्रय नहीं दिया। आलवारों की भक्ति ने धर्म को प्रमुखतः भावात्मक स्वरूप दिया। एक विशिष्ट अर्थ में भक्ति ने पतनशील बौद्ध और जैन धर्म के समानांतर एक नव धर्म के संगठन का आधार निर्मित किया। यह धर्म वैदिक धर्म के प्रायः सभी रूपों से पर्याप्त भिन्न ही नहीं था, एक हद तक उनका विरोधी भी था। यह नवीन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल था और इसमें सामंतवाद के विचारों का प्रभावी प्रतिबिंब था। बाद में यह नव धर्म हिंदू धर्म के रूप में विकसित हुआ और उसने प्राचीन ब्राह्मणवाद का आधार भी लिया। दक्षिण भारत में विशेषतः तमिल क्षेत्र में 6वीं सदी के बाद भक्ति की भावना और विचारधारा को जनसाधारण तक फैलाने वाले 12 वैष्णव आलवार और 63 शैव नयनार भक्तों ने महानों की महानता से अप्रभावित रहने और नगण्यों की नगण्यता से दृढ़ न करने के विचार पर बल देकर भेदों के विरुद्ध मानवीय समता पर बल दिया। उन्होंने संस्थाओं, पुस्तकों और मध्यस्थों के अधिकार क्षेत्र में कैद बौद्ध, जैन और एक सीमा तक ब्राह्मण धर्मों और उनकी उपासक उपास्य संबंध में मध्यस्थ को महत्वपूर्ण भूमिका देने वाली उपासना पद्धतियों को गहरी चुनौती पेश की। उन्होंने कर्मकांड और बाह्य प्रक्रियाओं के स्थान पर भावना को, बुद्धि और ज्ञान के स्थान पर प्रेम को, शिष्यता भाव के स्थान पर विनम्रता और समर्पण को, तर्क के स्थान पर आस्था को, कुल जाति धन वर्ग की उच्चता के स्थान पर सद्गुणों को, ऊंच नीच के विभाजन के स्थान पर बंधुत्व पर बल दिया। उनका ईश्वर दंडदाता न होकर दयावान, करुणा सागर, भक्तवत्सल, प्रणत्पाल था। वह माता, पिता, बंधु, सखा, प्रेमी और रक्षक था। ईश्वर और उपासक के संबंध में यह क्रांतिकारी परिवर्तन था। ईश्वर तक पहुंचने के लिए धर्म, जाति, पात, ऊंच नीच, धन और कुल आदि की कोई बाधा न थी। यह एक जनतांत्रिक विचार था। भक्ति के अनुसार ईश्वर मंदिरों में नहीं, आत्मा के गृह में, पुस्तक, चित्र और मूर्ति में नहीं, सब जागतिक मनुष्यों में मौजूद था। अपर शाब्दिक अर्थ पिता के नाम से प्रसिद्ध तृणा वक्रसु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जाति और वर्ग मेरे लिए बेमानी है और मैं किसी पंचम तथा कुष्ठ रोगी की पूजा करने को तैयार हूँ, क्योंकि उसमें ईश्वर का निवास है। इस भक्ति ने पहली बार ईश्वर को उसके अति प्राकृत स्वरूप से मानवीय स्वरूप में अवतरित किया। उसे पारलौकिक ऊंची दुनिया से धरती पर उतारा गया। सामान्य और साधारण जनों को, वंचितों, दलितों और स्त्रियों को उससे संवाद का अवसर उपलब्ध हुआ। जनतांत्रिकरण की इस प्रक्रिया में भक्तों द्वारा अपनी बात कहने के लिए चुनी गई भाषा के कारण भक्ति ने क्रांतिकारी स्वरूप और महत्व धारण कर लिया। शूद्र और स्त्री, जिन्हें संस्कृत और ब्राह्मण वर्चस्व के समय में प्रायः अभिव्यक्ति नहीं मिली थी, अपनी मातृभाषा में ईश्वर से और कविता में स्वयं को प्रकट करने वाली बातें करने लगे। संस्कृत के नाटकों में, जहाँ की इनके बिना नाट्य समाज की सृष्टि असंभव थी, वहाँ ये तब की लोक भाषाओं में प्राकृत में अपनी बातचीत करते थे। भक्ति आंदोलन में जनतांत्रिकरण की प्रक्रिया संस्कृत भाषा अर्थात शास्त्र परंपरा के वर्चस्व को तोड़कर आगे बढ़ी। मातृभाषाएं आधुनिक भारतीय भाषाएं रचना के माध्यम के रूप में विकसित हुई। देखते ही देखते शूद्रों और स्त्रियों के स्वर कविता में जगह पाने लगे। नई जनतांत्रिक सामाजिकता और धार्मिक जनवाद की दिशा में यह क्रांतिकारी प्रस्थान साबित हुआ। संस्कृत में ईश्वर से वार्ता के लिए मध्यस्थता की आवश्यकता थी। मातृभाषा में यह रोक नहीं रही, परिणाम सामने था। पूरी धार्मिक प्रक्रिया में लाभ कमाने वाले बीच की कड़ी का गहरा आघात हुआ और धर्म एक निजी व्यक्तिगत चीज बन गया। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का विद्वत्तापूर्ण और मार्क्सवादी विचार पद्धति से सम्यक विश्लेषण करने वाले इतिहासकारों में MGS नारायण और वेलुथॉट केशवन ने ठीक ही माना है कि यह रूढ़ सामाजिक व्यवस्था का विरोध था। उनके अनुसार जाति विषयक नियमों के प्रति उनकी सामान्य उदासीनता स्थापित समाज व्यवस्था के प्रति एक संयत ढंग का विद्रोह था। इस नव विकसित धर्म ने एक समतावादी और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण भी अपनाया, जिसका क्लासिकी ब्राह्मणीय अनुशासन में नितांत अभाव था। भक्ति का विचार और भावना सामंतवादी संबंधों का प्रतिबिंबन करते थे। हम जानते हैं कि भक्ति परंपरा में ईश्वर और भक्त का प्रायः सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय संबंध रूप प्रभुदास का है। उसमें भक्त स्वयं को दास और ईश्वर को मालिक या प्रभु के रूप में देखता है। वस्तुतः यह जागतिक सामंती संबंध का आध्यात्मिक रूपांतर मात्र है। यह महत्वपूर्ण है कि संसार में सामंत प्रभु और भक्ति में ईश्वर प्रभु के लिए दिए जाने वाले संबोधनों में भी साम्य है। प्रभु, ईश्वर, नाथ, मालिक, स्वामी, ठाकुर, देव शब्द दोनों क्षेत्रों में मान्य है। स्वयं को स्त्री रूप और प्रभु को पुरुष पति के रूप में देखने में भी पुरुष के घर में सामंती समाज में स्वीकृत प्रभुत्वकारी स्थिति का ही प्रतिबिंबन होता है। भक्तों के विविध संप्रदायों में निर्मित मठों और मंदिरों में सामंतों की हवेलियों जैसा ही साफ श्रृंगार किया जाता है। इन मंदिरों में विराजी भगवान मूर्तियों के साथ भक्तों और समर्थक सामाजिकों का बर्ताव किसी सामंत या महासामंत जैसा ही है। भारत में सामंतवाद की प्रायः पहली मौलिक और मार्क्सवादी विचारों के अनुरूप पहचान करने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार भक्ति सामंतिक मानस की ठेठ उपज मालूम होती है। ध्यातव्य है कि देश भक्ति का प्रचार लगभग 7वीं सदी से तेजी से हुआ। इस समय तक सामंती सामाजिक संरचना प्रायः प्रतिष्ठित हो चुकी थी। भक्त देवता की पूजा करता था, जिसके बदले उसे उसकी कृपा देव या देव प्रसाद प्राप्त होता था। भक्ति संप्रदाय के अनुसार भक्त देवता को अपना संपूर्ण समर्पण कर देते थे और उनकी अनन्य निष्ठा होती थी। भक्त मानता था कि उसने अपने आराध्य देव से घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लिया है और वह अपना संपूर्ण अवलंबन उसी पर रखता था। भक्ति संप्रदाय के आचार विचारों की तुलना रहितों के पूर्ण रूप से भूस्वामियों के वशवर्ती होने से की जा सकती है। रैयत अपनी पैदावार का हिस्सा अपने भूस्वामी को देते थे और अपने शरीर से भी उसकी सेवा करते थे। बदले में कृपा या प्रसाद के रूप में उन्हें भूमि तथा संरक्षण प्राप्त होता था। यह संबंध पूर्ण रूप में वैयक्तिक था। ऐसा ही संबंध व्यक्ति तथा उसके आराध्य के बीच स्थापित हुआ। गांव पर ईश्वर के साथ निकट और निजी संबंध भी निकट मौजूद सामंत या भूस्वामी से निकटता का ही प्रतिबिंब था। दास व्यवस्था के राजतंत्र में किसान, कृषि मजदूर और कृषि आधारित शिल्पियों से राजा के निकट संबंध के अवसर नहीं थे, जबकि सामंती व्यवस्था में सामंती प्रभु और गोस्वामी तुलनात्मक रूप से निकट मौजूद रहते थे। रामचरण शर्मा ने इस अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नोटेड कामा, यह सच है कि किसान प्राक सामंती युग में भी देवताओं की भक्ति करता था, लेकिन तब देवता से उसका संबंध उसी ढंग का था जैसा करदाता किसान और राजा के बीच का संबंध था। किसान राजा के प्रति वफादार अवश्य था, लेकिन उससे उसका संबंध उतना घनिष्ठ नहीं था, जिसका कारण यह था कि उसे राजा के सतत संपर्क में रहने का अवसर नहीं मिलता था। राजा के लिए करों की उगाही उसके अमले करते थे, किंतु सामंती व्यवस्था में अधिकतर भूस्वामी मौके पर मौजूद रहते थे और इसीलिए बराबर किसानों के व्यक्तिगत संपर्क में रहते थे। अतएव किसान तथा उसके भूस्वामी के घनिष्ठ संबंध के कारण भक्ति संप्रदाय को अपरिमित शक्ति प्राप्त हुई। सामंतों या अधीनस्थ सरदारों तथा सर्वोच्च शासक अर्थात राजा के निकट संबंध से भक्ति संप्रदाय को और भी समर्थन मिला। सामंत या सरदार किसानों के मुकाबले में अपनी स्थिति को वैध बनाने के लिए शासन याचना किया करते थे। इस प्रकार के पारस्परिक संबंध ने भक्ति संप्रदाय को अवश्य प्रभावित किया होगा। सामंतवाद के तत्व समाज में काफी लंबे समय तक कायम रहे, इसलिए भक्ति ने भारतीय संस्कार में अपनी जड़ें काफी गहरी जमा ली। तमिल क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का प्रभाव रामानुज के संप्रदाय के माध्यम से महाराष्ट्र होते हुए हिंदी क्षेत्र में आया। यद्यपि नाथों और सिद्धों के द्वारा एक हद तक इस क्षेत्र में इस पूर्व पुटिका निर्मित हो चुकी थी, रामानुज निजी तौर पर आलवारों के संपर्क में आए थे। उनके विचार दर्शन में तमिल भक्ति आंदोलन की सीमित जनवादिता के दर्शन होते हैं। उन्होंने सामंतवाद को कोई बड़ा वैचारिक आघात पहुंचाए बिना उसकी परिधि के भीतर ही अपने विचारों का विकास किया। उन्होंने शंकराचार्य के दर्शन और सामंती सामाजिक विचारों का विरोध करने के साथ ही भक्ति क्षेत्र में जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया तथा विष्णु के सम्मुख सबकी समानता का विचार प्रतिपादित किया। वे पुरोहितों की उपस्थिति को भी आवश्यक नहीं मानते थे। उनके द्वारा प्रवर्तित श्री संप्रदाय भक्ति आंदोलन के उदात्त मूल्यों का वाहक था। सात भोजन सात भजन के विधान जाति बंधनों को अस्वीकार करने का ही दूसरा नाम था। 13वीं सदी के आचार्य मध्व ने शूद्रों को वेद पाठ और भक्ति विष्णु भक्ति की वकालत की। रामानुज के शिष्य 14वीं सदी के रामानंद को सामान्यतः महाराष्ट्र हिंदी क्षेत्र और पंजाब सिंध में उभरे तीसरे दौर के भक्ति आंदोलन के वास्तविक प्रारंभकर्ता का श्रेय दिया जाता है। हिंदी क्षेत्र के भक्ति आंदोलन का उदय सामंतवादी परिस्थितियों से गहरे तक पीड़ित जनता में पहले हुआ। भक्ति को अपने क्रांतिकारी विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने वाला कबीर और नानक जैसे प्रारंभिक नेताओं का सामना ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म वर्चस्ववादी धर्मसत्ता और मजबूत सामंती सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था से था। कहना न होगा कि इस आंदोलन की परिस्थितियां और आवश्यकताएं तमिल भक्ति आंदोलन से काफी भिन्न और नए तरह की थी। यह तब और नए आयाम ग्रहण कर लेता है जब हम इस्लाम के आगमन से उपजी नई स्थितियों को इनमें जोड़ कर देखते हैं। स्पष्ट है कि भक्ति आंदोलन को एक नई भंगिमा की आवश्यकता थी। भक्ति आंदोलन को यह नई क्रांतिकारी भंगिमा कबीर नानक और रविदास जैसे निम्न जाति संतों ने दी, जिन्हें प्राय निर्गुण भक्ति की ज्ञानश्रेय शाखा से संबद्ध किया गया है। कबीर आदि निर्गुणी संतों ने भक्ति को परिवर्तनकारी वैचारिक अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया। वे सिर्फ भावात्मक स्थितियों में ईश्वर के निकट जाने की इच्छा रखने वाले कवि भक्त न थे। उन्होंने जीवन की विषम परिस्थितियों जातीय शोषण और समानता और भेदभाव आदि के प्रति एक तार्किक दृष्टिकोण अपनाया। वे सामाजिक भेदभाव को ईश्वर इच्छा पूर्वजन्म के कर्मों का फल आदि मानने के लिए तैयार न थे। उनके मन में प्रश्नों के समुचित जवाब किसी तार्किक पंडित तक नहीं पहुँचे थे, पर वे इतना तो समझ ही रहे थे कि यह भेदवादी व्यवस्था मनुष्यों द्वारा निर्मित है, ईश्वर द्वारा नहीं। वे मनुष्यों के बीच निर्मित भेदों के लिए सामाजिक सत्ता विशेष धार्मिक सत्ता को जवाबदेह मानते हैं। उन्होंने भक्ति को भावनात्मक अपील से बाहर निकालकर पूरी ताकत से तार्किक वाद विवाद की ओर मोड़ा। धर्म सत्ता पर उनका खुला निर्भय अकुंठ समझौताहीन आक्रामक रवैया इसी का परिणाम था। स्पष्ट है कि भक्ति आंदोलन के सभी प्रदेशों और कालों के सभी भक्तों की तुलना में कबीर की चेतना विलक्षण, अद्वितीय और क्रांतिकारी थी। हिंदी क्षेत्र में आंदोलन का उदय, वाद विवाद। भक्ति आंदोलन पतनशील सामंतवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन था। सामंती व लोक शक्तियों का द्वंद्व इसके माध्यम से अभिव्यक्त होता है। इतिहास व साहित्य इतिहास के विभिन्न विद्वानों ने भक्ति आंदोलन के उद्भव के बारे में विभिन्न मत व्यक्त किए हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन का अनुमान है कि ईस्वी सन की दूसरी तीसरी शताब्दी में नेस्टोरियन ईसाई मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में आवसे थे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता रामानुजाचार्य को इन्हीं ईसाई भक्तों से इस आंदोलन की प्रेरणा मिली, जो उत्तर भारत में प्रचारित प्रसारित हुआ। कुल मिलाकर उनका आशय यह था कि यह आंदोलन ईसाईयत की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आंदोलन के उद्भव का मूल कारण मुसलमानों द्वारा पराजित हिंदू जनता की निराशा को बताया। आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी ने उपर्युक्त दोनों मान्यताओं का खंडन किया। प्रियर्शन के मत पर उनकी प्रतिक्रिया थी कि इस आंदोलन के लिए सैकड़ों वर्षों से मेघ खंड एकत्रित हो रहे थे, फिर भी ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि उसका प्रादुर्भाव एकाएक हो गया। इसका कारण उस काल की लोक प्रवृत्ति का ठोस शास्त्र सिद्ध आचार्यों और पौराणिक ठोस कल्पनाओं से युक्त हो जाना था। द्विवेदी जी ने आचार्य शुक्ल की मान्यताओं का भी कड़ा विरोध किया। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा का उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए। आचार्य द्विवेदी ने दोनों मतों का खंडन अवश्य किया और अपना मत व्यक्त करते हुए तत्कालीन सामाजिक अंतर्विरोधों के परिप्रेक्ष्य में उसके मूल चरित्र को वे भी स्पष्टता के साथ रेखांकित नहीं कर सके। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से आया, जहां इसका उदय अलवार संतों से हुआ। अब यह बात सर्वमान्य हो चुकी है। मुक्तिबोध इस बात में महत्वपूर्ण तत्व रेखांकित करते हुए कहते हैं, नोटेड कामा, समाज की धर्मशास्त्रवादी वेद उपनिषदवादी शक्तियों ने उसे प्रस्तुत नहीं किया। नोटेड कामा, इससे भक्ति आंदोलन की लोकोन्मुखता का पता चलता है, पर यह भूल जाना ठीक नहीं होगा कि इस आंदोलन को दार्शनिक आधार देने वाले दक्षिण के वैष्णव आचार्य ब्राह्मण थे और धर्मशास्त्रवादी वेद उपनिषदवादी भी। उन्होंने अपने तर्कों के लिए वेद उपनिषदों से समर्थन जुटाया। उदय की पृष्ठभूमि। भक्ति आंदोलन के उदय में विदेशी ताकतों की भूमिका सिद्ध करने वाले मत आज अस्वीकृत हो चुके हैं। सर्वसम्मति से यह स्वीकारा जा चुका है कि यह आंदोलन पूर्णतः तत्कालीन भारतीय समाज की विशिष्ट परिस्थितियों की उपस्थिति। यह आंदोलन सामंतवाद उत्पीड़न से गहरे तक पीड़ित जनता का प्रतिरोध था। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार, भक्ति आंदोलन विशुद्ध देशज आंदोलन है। वह सामंती समाज की परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ। मूलतः मध्यकालीन समाज व्यवस्था में जनता का सामंत विरोधी सांस्कृतिक आंदोलन था। रामविलास जी ने भक्ति आंदोलन की तुलना यूरोपीय भक्ति आंदोलन से करते हुए यह दिखाया है कि दोनों के उद्भव की परिस्थितियां लगभग एक थी। उनके अनुसार यह उस समाज व्यवस्था की उत्पत्ति है जिसमें समाज का मुख्य वर्ग भूपतियों का होता है तथा धर्म, संस्कृति और शिक्षा का कार्य पुरोहित वर्ग के हाथ में रहता है। इस समाज में थोड़े से महाजन और व्यापारी होते हैं और शेष जनता खेती करती है या कपड़ा आदि बुनना जैसे दस्तकारी के अन्य काम करती है। इस समाज व्यवस्था में धर्म और संस्कृति कर्मकांड से बंध जाते हैं। धर्म साधना के लिए भी द्रव्य आवश्यक होता है। श्रम करने वाली जनता को दबाकर रखने के लिए पुरोहित वर्ग नरक का भय दिखाता है। जनता ने इस कर्मकांडी पौरोहित्य और सामंतवाद समर्थक धार्मिक उत्पीड़न से मुक्ति के लिए ही उस भक्त की खोज की जिसके लिए न तो देवस्थल जरूरी था न पुरोहित। भक्ति ईश्वर से सीधे संबंधों की वकालत करने लगी। यह आंदोलन पतनशील सामंतवाद से उपजा। की दामोदरन इन परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहते हैं, नोटेड कमा, भारत में सामंतवाद के अधःपतन के साथ ही हिंदू धर्म एवं व्यवस्था में गतिरोध के लक्षण दिखाई देने लगे। पुरानी व्यवस्था के पांडित्यपूर्ण प्रतिनिधियों ने स्मृतियों और शास्त्रों की नई व्याख्याएं प्रस्तुत करके पुरानी ढहती हुई सामाजिक व्यवस्था को किसी तरह बचाए रखने का भरसक प्रयास किया और उत्तर सामंत काल के लोगों पर पुराने नियमों को लागू करने के जी तोड़ प्रयत्न किए। किंतु नई सामाजिक तथा आर्थिक शक्तियाँ भी नए विचार और नई धार्मिक अवधारणाएँ लेकर मैदान में उतर रही थी। मुस्लिम आक्रमण के पीछे पीछे भारत में प्रवेश करने वाले सामाजिक और धार्मिक विचारों के इस प्रक्रिया को गति मिली। जिन आर्थिक शक्तियों के उदय की बात के दामोदर ने की है उन्हें और गहराई से समझना आवश्यक है। उस समय में व्यापारिक शक्तियां चलनशील हो उठी थी। आर्थिक शक्तियों के उदय के फलस्वरूप कृषि और दस्तकारी की तकनीक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सिंचाई में रहट का व्यापक रूप से प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिसमें विशेष रूप से नदियों के किनारे और दुआब के क्षेत्र में कपास और अन्य फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई। सूत काटने और कपड़े की रंगाई पुताई की तकनीक में महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित हुए, जिससे बुनकरों और वस्त्र उद्योग की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। मध्य एशिया के सीधे संपर्क के कारण भारत के व्यापार का भी बहुत प्रसार हुआ। इन नई परिस्थितियों ने व्यापारियों और कारीगरों का सीधा संबंध और गहरा करने में योगदान दिया। इन नई परिस्थितियों में शिल्पी और किसान वर्ग में आत्मविश्वास बढ़ा। व्यापार बढ़ने के साथ ही 12वीं और 13वीं शताब्दी में शहरीकरण की लहर उत्तर भारत में फैलने लगी थी। यहाँ का नया शासक वर्ग नगर में रहना अत्यधिक पसंद करता था। कृषि और अन्य नए उत्पादन बढ़ाने के कारण लगान बढ़ाने की मांग में भी वृद्धि हुई। यही बढ़ी हुई मांग तुर्क शासक वर्ग को उत्तराधिकार में मिली, जिसे उन्होंने शासन व्यवस्था का केंद्रीयकरण करके और अधिक सुव्यवस्थित किया। इस प्रकार इस शासक वर्ग को कर पहले से अधिक उपलब्ध थे, जिन्हें अधिकतर शहरों में ही व्यक्त किया जाता था। इसी तरह कई नए शिल्पों का विकास संभव हुआ। स्पष्ट है कि सामंतवाद टूटने लगा था और नई आर्थिक शक्तियों के विकास को गति मिली। इन परिस्थितियों में भक्ति आंदोलन पैदा हुआ, जिसके कारण एक ओर आर्थिक उत्पादन में कुशलता और वृद्धि के कारण किसानों और दस्तकारों में शोषण और अन्याय के प्रति विद्रोह की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है, तो दूसरी ओर राज्य शक्ति की बढ़ती हुई मांग तथा विशेषकर राज्य कर्मचारियों के भ्रष्टाचार तथा तीसरी ओर सामाजिक अत्याचार, जिसका सबसे ज्वलंत उदाहरण जाति प्रथा है। पुरोहितों सामंतों द्वारा तय की गई जाति व्यवस्था को असमानता पर आधारित थी से क्षण भर के लिए विलग होने पर भी नरक जाने का विधान बना दिया गया था। उसके विरोध में जनता ने अपनी प्रतिक्रिया इस आंदोलन के माध्यम से व्यक्त की। मुस्लिमों के आगमन से उपजी स्थितियों की भी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस आंदोलन के पीछे हिंदू मुस्लिम समन्वय को भी प्रधान मानते हैं। इन्होंने कामा पुराने जमाने की तरह हिंदुस्तान में इस नई परिस्थिति की तरफ एक प्रतिक्रिया चल रही थी और विदेशी तत्वों को जज्ब करने की कोशिश में वह अपने को कुछ तब्दील कर रहा था। इस खमीर से नए ढंग के सुधारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने इस समन्वय के पक्ष के साथ उपदेश दिए और अक्सर वर्ण व्यवस्था की निंदा या अवहेलना की। भक्ति आंदोलन में कुरान के मूल जनसत्तात्मक तथा समतावादी सिद्धांतों से विचलित हो रहे उलेमाओं के विपरीत खड़े हुए सूफी शामिल हुए। समानता पर इस्लाम जो बल देता था, उसका सम्मान सूफी लोग उलेमाओं से अधिक करते थे। इसके परिणामस्वरूप शिल्पी तथा कृषक वर्ग ऐसे राष्ट्रवादी धर्म साधकों के संपर्क में आया। इस प्रकार कृषकों के लिए सूफी उलेमा की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली धार्मिक नेता बन गए। इस तरह भक्ति आंदोलन तत्कालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तनों से उपजा था। उसमें हिंदू मुस्लिम सामंतवादी तत्वों के विरुद्ध निम्न वर्गीय हिंदू मुस्लिम जनता का विक्षोभ व्यक्त हुआ है। इन्होंने समान रूप से हिंदू और इस्लाम धर्म की कट्टरता, शास्त्रबद्धता और पुरोहितिक कर्मकांड का विरोध किया है तथा जातीय एकता पर बल दिया है। आंदोलन का मूल चरित्र। भक्ति आंदोलन शुद्धतः एक धार्मिक आंदोलन नहीं था। वैष्णवों के सिद्धांत उस समय व्याप्त आर्थिक यथार्थ की आदर्शवादी अभिव्यक्ति थी। सांस्कृतिक क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रीय नवजागरण का रूप धारण किया। सामाजिक विषय वस्तु में वे जाति प्रथा के आधिपत्य और अन्याय के विरुद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण विद्रोह के द्योतक थे। इस आंदोलन में भारत में विभिन्न राष्ट्रीय इकाइयों के उदय को नया बल प्रदान किया, साथ ही राष्ट्रीय भाषाओं और उनके साहित्य की अभिवृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त किया। यह सिद्धांत कि ईश्वर के सामने सभी मनुष्य फिर वे ऊंची जाति के हों अथवा निजी जाति के समान हैं, इस आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गया, जिसने पुरोहित वर्ग और जाति प्रथा के आतंक के विरुद्ध संघर्ष करने वाले आम जनता के व्यापक हिस्से को अपने चारों ओर एकजुट किया और सामंती दमन और उत्पीड़न के विरुद्ध संयुक्त संघर्ष चलाने का मार्ग भी प्रशस्त किया। हमने देखा कि भक्ति आंदोलन का विकास देश के विभिन्न मार्गों में विभिन्न रूपों में हुआ। जगह जगह इसके नेता भिन्न थे, उनके काम की पद्धतियां और मान्यताएं भिन्न थी। उस भिन्नता के बाद भी कुछ मूलभूत सिद्धांत ऐसे थे जो समग्र रूप से भक्ति आंदोलन के मूल में थे। नोटेड कामा, पहले धार्मिक विचारों में भिन्नता के बावजूद जनता की एकता को स्वीकारना, दूसरे ईश्वर के सामने सबकी समानता, तीसरे जाति प्रथा का विरोध, चौथे यह विश्वास कि मनुष्य और ईश्वर के बीच तादात्म्य प्रत्येक मनुष्य के सद्गुणों पर निर्भर करता है, न कि उसकी जाति अथवा धन संपत्ति, पांचवें इस विचार पर जोर कि भक्ति की आराधना का उच्चतम स्वरूप है, और अंत में कर्मकांडों, मूर्ति पूजा, तीर्थाटनों और अपने को दी जाने वाली यंत्रणाओं की निंदा। इनोटेड कामा पर भक्ति आंदोलन मनुष्य की सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता था, इसीलिए मनुष्य मात्र से उसके नेताओं के लिए प्रेम सर्वोपरि था। उनकी भक्त सभी वर्गगत एवं जातिगत भेदभाव तथा धर्म के नाम पर किए जाने वाले सामाजिक उत्पीड़न का विरोध करती थी। भक्ति आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इनोटेड कामा, उसके नेता जनता का आह्वान करते थे कि वे राम और रहीम दोनों को एक माने, ढोंग भरे कर्मकांड और जाति संबंधी भेदभावों से अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित बनाए तथा मनुष्य और ईश्वर के प्रति प्रेम की समान भावना के आधार पर एक हो जाए। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का उदय सामंतवादी परिस्थितियों में गहरे तक पीड़ित जनता में सबसे पहले हुआ। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व कहीं भी ब्राह्मण पुरोहितों तथा उच्च वर्गीय वाले अभिजात लोगों में नहीं किया। प्रारंभ में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के अधिकतर नेता निची जाति की माने जाने वाली जातियों के थे। रैदास, चमार, धर्मदास, अछूत जात, सेना, नाई, दादू निची जाति के बुनकर, नामदेव दर्जी, तुकाराम निची जाति के व्यापारी, नानक मामूली व्यापारी, कबीर जुलाहा, सधना कसाई, धना जाट आदि। कृष्ण भक्ति परंपरा के अष्टोच्छाव कवियों में कृष्णदास, कुंभनदास और चतुर्भुजदास आदि शूद्र जाति के थे। ये निम्न वर्गीय नेता सभी बातों में अत्यधिक क्रांतिकारी थे। ऊपर हमने भक्ति आंदोलन के जिस स्वरूप की चर्चा की, उसकी निर्मिति वास्तव में इन्हीं नेताओं के द्वारा हुई। इनकी क्रांतिकारिता के बारे में तुलसीदास के समकालीन नाभादास अपने भक्तमाल में लिखते हैं, भक्ति विमुख जो धर्म तही अधर्म करि गायो, जोग यज्ञ प्रतिदान भजन बिनु तुच्छ दिखायो, हिंदू तूर्वक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, हिंदू नहीं वचन सबहि के हित की भाखी, आरूढ़ दशा जगत पर कुख देख नाहिन कहीं, कबीर काने राखि नहीं वर्णाश्रम षट पर दर्शन। कामन, यह कबीर के बहाने सभी निम्न वर्गीय नेताओं का वास्तविक मूल्यांकन है। उपेक्षित पीड़ित जनता के पक्ष में उन्होंने समन्वय व सुलह समझौते वाले मार्ग को न चुनकर सीधे संघर्ष का मार्ग चुना। कबीर ने निर्गुण भक्ति आंदोलन के द्वारा दीनहीन, उपेक्षित, पीड़ित निम्न वर्गीय हिंदू मुस्लिम जनता के लिए भक्ति मार्ग प्रस्तुत किया। वहीं निम्न जाति धार्मिक जनवाद की घोषणा कर एक क्रांतिकारी काम किया। इससे हिंदू मुसलमान सत्ताधीशों, पुरोहितों और मौलवियों की वास्तविकता का उद्घाटन हुआ। वहीं निम्न वर्गीय हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी और उनकी चेतना पर छाए हुए धार्मिक, सामाजिक आडंबर और झूठ अनावृत हुए। मुक्तिबोध के शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि यूनिटेड कामा निर्गुण भक्ति में तात्कालिक सामंतवाद विरोधी तत्व सर्वाधिक थे। इन तत्वों ने कई जगह महत्वपूर्ण राजनीतिक आंदोलन का रूप लिया। शिवाजी और सिखों के राजनीतिक संघर्ष, आगरा मथुरा क्षेत्र के जाट किसानों और मध्य भारत के किसानों के संघर्ष तथा विद्रोह इसके उदाहरण हैं। यूनिटेड कामा 1।